आयत नंबर 17 से लेकर 33 तक बाग वालों का किस्सा बयान किया गया है और कैसे अल्लाह ताला ने आगाज किया, इन्ना बलौना हुम कमा बलौना असहाबल जन्ना, इन्ना बलौना हुम, बेशक हमने आजमाया इनको, हुम की जमीर आई है अहले मक्का के लिए, हमने अहले मक्का को आजमाया, कमा बलौना जिस तरह हमने आजमाया था, असहाबल जन्नती बाग वालों को, तो अहले मक्का को भी हमने आजमाया, तो अहले मक्का को जो दौलत दी और बाग दिए और सरदारियां दी और बेटे दिए, तो असल में ये तो आजमाइश के लिए दिए थे और ये अपने आप को बड़े बना बैठे और रसूल और रसूल को किताब जो दी गई थी कुरान मजीद इसका मजाक उड़ाने लगे। तो कहा जा रहा है कि अहले मक्का तुम्हारी ही आजमाइश नहीं हुई, ए कुरैश के लीडरों तुम्हारे सामने मैं एक किरदार पेश करता हूँ, एक मिसाल पेश करता हूँ, इनको भी हमने आजमाया था, कमा बलौना असहाब अल जन्ना। तो ये मेरे और आपके लिए भी जो है वो एक मिसाल है कि हम अपना अपना जायजा लें कि अल्लाह तो आजमाता है। इज अक्समू, जब उन्होंने कसम खाई, तो ये कसम खाने वाले कौन थे, इसके बारे में मुफस्सरीन ये बताते हैं। बाद सलफ में से जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह का कौल है कि ये यमन में एक शख्स था, हजरत सईद बिन जुबैर की भी रवायत है कि ये सना का इलाका जो यमन का मशहूर दारुस सल्तनत है उसका शहर था, तो उससे 6 मील के फासले पर जो है एक शख्स था जिसका बाग था, तो उसकी यहाँ पे जो है वो मिसाल दी गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है असहाबुल जन्ना, बाग वाले। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये बात कही जा रही है कि बाग के मालिकों को, क्योंकि असहाब कहा है, साहेब नहीं कहा ना, तो बाग के मालिकों को, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि अरबों के यहाँ जो बाग होता था साथ ही साथ बहुत सी कतात यानी बहुत सी जमीनें भी होती थी, बाग भी होता था और ऐसा इलाका और ऐसा जमीन का हिस्सा होता था जिस पर वो बहुत सी चीजें जो थी वो उगाया करते थे। तो असहाबल जन्नती कहने का मतलब ये है कि एक जो है वो मालिक नहीं था, कई मालिक थे, वो गोया के जमीन के अंदर बाग के साथ साथ और भी जमीन के ऐसे हिस्से थे जहां पे और चीजें भी उगाई हुई थी। दूसरी बात यह कि अल जन्नत कहा, जन्नत नहीं कहा, अलिफ लाम आया, तो एक आम बाग नहीं है, खास बाग का जिक्र किया जा रहा है, बड़ा मुय्यन बाग है। तो कहते हैं कि यमन या सना का वो खास बाग जो है वो इससे मुराद है, और बहरहाल कोई भी बाग हो सकता है, लेकिन है कोई खास बाग ना। इस अक्सम, जब उन्होंने कसम खाई, अच्छा कसम किस बात पे खाई, लयसरी मुन्नहा के वो जरूर बजरूर जो है वो तोड़ लेंगे फल इसका, हा की जमीर आई है बाग के लिए, कब तोड़ेंगे, मुसबहीन, मुसबह की जमा है मुसबहीन, कि सुबह होते ही वो बाग का फल जो है वो तोड़ लेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लयसरी मुन्नहा और स्वाद रा मीम जो है इसके मानी होते हैं कि तेज धार चाकू से फलों के गुच्छे काट लेना, और स्वाद रा मीम ये मस्दर है और सारिम तलवार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तलवार से काटा जा किसी को काटा जाता है ना, मारा जाता है ना। तो अब वो कसम खा कर कह रहे थे, अब कसम भी ताकीद है और फिर लाम आगे आ गया, ये फिर ताकीद है, और नून भी शद है, ये भी नून ताकीद है, ताकीद दर ताकीद। तो वो उनको इतना यकीन था कि वो कसमें खा खा कर ये बात कह रहे थे कि मुसबहीन सुबह से है, कि सुबह सवेरे ही अपने बाग के फल हम जरूर तोड़ लेंगे। अच्छा ये कसमें खाने वाले कौन थे और ये कसमें क्यों खा रहे थे, कहते हैं कि ये जो बाग का मालिक था ना, बाग का मालिक बहुत नेक शख्स था, और वो कैसा था कि वो नेक था, सवाले था, नमाजी था, उसका अमल ये था कि जब खेती काटता था तो जो दरख्त दरांती से बाकी रह जाते थे काटते वक्त, उनको वो फकीरों और मस्कीनों के लिए छोड़ देता था, ताकि लोग जो है उससे गल्ला लेकर अपना गुजारा करें, जो गरीब मस्कीन, तो कुछ हिस्सा वो उसके लिए छोड़ देता था। और बात कहते हैं कि जब खेती को जो है जैसे अब जो गल्ला काट लिया है तो उसमें से जैसे जो भूसा है उसको अलग किया जाए, तो दाने अलग किए जाए, तो कुछ दाने जो है ना वो भूसे के साथ रह जाते हैं, तो वो उनको भी रहने देता था, उनको रहने देता था। तो फकीर और मिस्कीन जो है भूसे में से दाना जो थे वो निकाल लेते थे। फिर वो क्या करता था कि बाग के दरख्तों से जब फल तोड़ता था तो तोड़ते वक्त बहुत से फल नीचे गिर जाते थे, उन फलों को भी नहीं उठाता था, उन फलों को भी वो फकीरों के लिए और मिसकीनों के लिए वो छोड़ देता था। और कहते हैं कि इसका दस्तूर था कि अपने बाग के फल के तीन हिस्से करता था, एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे करता था, और एक राय ये भी आती है कि फल की फसल का जब मौका आता तो तीन हिस्से करता, एक हिस्सा अपने घर की जरूरियात के लिए रखता, दूसरा अपने करीबी रिश्तेदारों और हमसायों में तकसीम करता, तीसरा हिस्सा फकीरों और मस्कीनों में बांट देता। अब इस वजह से इसका बाग सबसे ज्यादा फसल देता था, और होता ये कि जब कटाई का मौसम आता फकीर मस्कीन मौके पर पहुंच जाते और अपना अपना हिस्सा वसूल करते। अब जो इसकी औलाद थी ना, इसकी औलाद जो थी उसको अच्छा नहीं लगता था अपने बाप का ये रवैया। बाद घरों में मेहमान नवाजी होती है तो बच्चे तंग रहते हैं, माँ बाप मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं ये क्या मुश्किल है। बाज वालदैन बड़े सखी होते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं रखा, आप फलां को क्यों दे रहे हैं। तो बाज बच्चों को अपने माँ बाप की सखावत पसंद नहीं आती। आज के दौर में भी, बहरहाल उस जमाने में हुआ ये कि ये शख्स हो गया फौत, तो इसके बेटों को ख्याल आया कि हमारा बाप तो सारी उम्र बाप की फसल को जाया करता रहा, इधर उधर तकसीम करता रहा, और जिंदगी भर की कमाई यूं ही लुटाता रहा, और जिंदगी भर हमारा बाप रहा मुफलिस गरीब, अब इस रीत को खत्म करेंगे। उन्होंने मिलकर ये मशवरा किया कि बाग हमारा है और इस पर हक हमारा है, और उन्होंने आपस में ये भी तय किया कि जब कटाई का मौका आएगा तो रातों रात ही कटाई कर लेनी है। क्यों? अगर हम दिन के वक्त कटाई करेंगे तो जो फकीर और मिस्कीन और मोहताज और यतीम लोग हैं वो तो हमारे जो अब्बा जान है उनके आदी हैं, वो तो दिन चढ़ते ही फसल की कटाई के मौके पर पहुंच जाएंगे, तो अंधेरे अंधेरे में जाकर बाग को काट लेंगे ताकि गरीब मिस्कीन जो हैं ना आए, ना करें तंग और ना मनाए बुरा, और उनके आने से पहले ही ना हम जो है बस सारा काम खत्म कर लेंगे। अच्छा, अब जब ये सब ने मिलकर प्लानिंग की तो अब क्या हुआ कि एक ने मशवरा लिया, दूसरे ने कहा हाँ 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 अब्बा जान ने ऐसे ही किया, तीसरे ने कहा कि ये बड़ा अच्छा मशवरा है कि सुबह उठते ही ऐसे कर ले, और फिर हुआ क्या कि सब कसमें खाने लगे कि यकीनन ऐसा ही करेंगे। होता है ना कि बाज़ वक़्त जैसे चोर डाकू भी कसमें खा खा कर कहते हैं कि ऐसे करना है, तो अब ये बुरी प्लानिंग भी कर रहे थे और साथ साथ कसमें खा रहे थे। और पीछे भी आपने पढ़ा कि जो किरदार अल्लाह ने पेश किया कैसा था, हल्लाफिन कसमें खाने वाला, अब इन्होंने भी कसमें खाई, और कसमें किस बात पर खा रहे थे, लयसरिमुन्नहा मुस्बहीन कि सुबह सवेरे जरूर अपने बाग के फल काट लेंगे। उनको लग रहा था कि कमें हमें कोई मना कर ही नहीं सकता ना, बाग हमारा है, हिस्सा हमारा है, और ये फकीर और मिस्कीन और गरीब और मोहताज कहां से। वला यस्तस्नून, और वो कोई इस्तस्ना नहीं कर रहे थे। इस्तस्ना के क्या मानी है? इस्तस्ना के मानी ये है कि वो इंशाल्लाह नहीं कह रहे थे, कि वो लोग जो थे इस्तस्ना नहीं कर रहे थे, कि वो इंशाल्लाह नहीं कह रहे थे। क्यों? ये सानून या से है। सानून या के मानी क्या होते हैं? कि बात को बयान करना, जैसे होता है ना तारीफ करना, सना का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बहरहाल तब यहां में बताया जा रहा है कि उनका हाल ये था कि वो लोग जो थे वो इस्तस्ना नहीं कर रहे थे। अच्छा, इस्तस्ना कैसे किया जाता है कि कभी जो कोई काम किया जाए तो फिर साथ ही जो है ये कहा जाए कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये जो सीन नून या है फिर इसके मानी क्या है कि इंशाल्लाह, यानी जैसे कोई बात करना, कोई अपनी जबान से बात कहना, तो अब होना ये चाहिए था कि वो कहते कि अगर अल्लाह ने चाहा। और आप सूरत कहफ पे भी पढ़ चुकी ना, कि वहां पे भी आपने ये बात पढ़ी थी सूरत कहफ के रुकू नंबर 5 में कि दो बाग वालों की मिसाल, तो वो इंशाल्लाह नहीं कर रहे थे। फताफा अलैहा ताइफुन, फिर गई उस पर एक फिरने वाली, तो तौफ से है तो किसी चीज का चारों तरफ से घूमना, तवाफ भी इसी से है ना, तवाफ भी इसी से है। अब हुआ ये कि अब जो है उनके ऊपर एक ताइफ जो थी वो फिर गई, तो ताइफ उन क्या है, गोया के एक बला, और बला कैसी थी कि हर तरफ से उस बाग के चारों तरफ, यानी बाग का कोई हिस्सा भी उस बला ने ना छोड़ा, उस आंधी तूफान ने, और उसने जो है वो उस बाग पर जो थी वो फिर गई। अब फिरने वाला फिर गया या फिरने वाली फिर गई, तो ताइफ उनसे मुराद है अजाब, और वो अजाब जो था वो कैसा था, वो आंधी था, वो तूफान था, वो क्या चीज थी जो उस पर फिर गई। तो असल में मुफस्सरीन कहते हैं कि बाज का ये कहना है कि जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उनका सारा बाग जो था वो स्या राख बन गया, कर रिमादिल अस्वद, रिमादिल अस्वद उन्होंने इसकी ये तारीफ की है, गोया के आंधी तूफान आग बस जल कर रह गया। तो बहरहाल तो वो आंधी तूफान या वो जो अजाब था आया कहां से, मेरे रब्बी का तेरे रब की तरह से, वहुम नाइमून, आया किस वक्त, नौम, वो नींद में थे, नाइम वाहिद है, नाइमून जमा है, और उस वक्त वो सोए पड़े थे क्योंकि अभी सोए हुए थे, शुरू रात में सोए हुए थे, आखिरी रात के हिस्से में उन्होंने जाना था सुबह सवेरे। आमतौर पे कटाई कैसे होती है, दिन चढ़ जाता है तो कटाई होती है, लेकिन अब रात के वक्त सोए हुए थे, रात ही रात में हुआ ये कि एक बला इस बाग पर फिर गई। फिर इस बाग का हाल कैसा हुआ, असबहत, और फिर इसको कर दिया, असबहा के मानी होते हैं हालत की तब्दीली, फिर उसका हाल ऐसे हो गया, कसरीन, जैसे के कटी हुई फसल का मानित, और मैंने आपको बताया स्वाद रा मीम जो है इसके मानी क्या होते हैं, तेज धार आले से फलों के गुच्छे काट लेना, ये तलवार को भी सारिम कहा जाता है। तो अब सारी की सारी वो जो खेती थी, वो जो बाग था, वो ऐसे हो गया जैसे के जो है वो कटी हुई फसल। फतनादउ मुस्बहीन, फिर लगे एक दूसरे को निदा देने, और तनादउ जो है इसमें याद रखिए तफाउल का बाब इस्तेमाल किया गया है कि कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं, तो ये जो भी उसके बेटे थे, जो भी उनकी औलाद थी, तो आपस में एक दूसरे को पुकारने लगे। अब पुकारा कब, मुस्बहीन, सुबह सुबह, जैसे बाज औकात होते हैं ना कहीं पिकनिक में जाना है, दूर का सफर करना है, तो क्या होता है कि सुबह सुबह ही आपस में एक दूसरे को जगाया जाता है, उस दिन बच्चे भी फौरन उठ खड़े होते हैं ना, एक ही आवाज पर उठ खड़े होते हैं। फतनादउ मुस्बहीन, अब लगे एक दूसरे को आवाजें देने, सुबह सुबह, सवेरे सवेरे, अनिगदू, कि सवेरे सवेरे चलो। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अब वो कहने लगे कि अनिगदू, तो अनिगदू जो है इसके मानी क्या है, गदन जो है वो अगले दिन सुबह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अनिगदू सुबह सुबह निकलो, ऑर्डर का सीगा है, सुबह सुबह निकलो, अला हर्सकुम, अपनी खेती की तरफ, हर्स खेती को कहते हैं, इन कुंतुम सारिमीन, अगर हो तुम जो है वो काटने वाले, अगर हो तुम फलों को तोड़ने वाले। तो अब आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि अगर वाकई तुमने फल तोड़ने हैं ना और फसल खेती को काटना है, तो फिर सुबह सुबह चलो। मतलब क्या था कि अगर तुम सुबह सुबह नहीं चलोगे मिलेगा कुछ नहीं, फिर सारे गरीब फकीर मिस्कीन जमा हो जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, सुबह सुबह धीरे धीरे। आप ही बच्चों को कहते हैं ना पिकनिक पे जाना है, सुबह सुबह चलो, दिन यही चढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, मजा नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि फन तलाकू, पस जो थे फापस इन तलाका, और फिर वो चले, और तलाका के मानी क्या होते हैं, अभी आपने सूरत तलाक के मानी पढ़े हैं, ऊंट का बंधन खोल देना, उसकी रस्सी जो जिससे उनको बांधा जाता है ना, उसकी रस्सी को खोल दिया जाए। तो अब क्या है कि वो जो सोए हुए थे या नींद में थे या जो भी बंधन थे उनके, कि जैसे होता है ना घर में आराम में मजे में वो शख्स होता है, लेकिन अब हुआ ये फन तलकू, बस वो चल पड़े, चल पड़े। वहुम यतखाफतून, और वो आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे, यतखाफतून भी बाबे तफाउल से है और खुफिया से, कि आपस में जो बातें कर रहे थे ना आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके। अच्छा चुपके चुपके बातें क्यों कर रहे थे, सब तो थे ही, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि करीब हम जो हमसाए हमसायों को दिया जाता था, रिश्तेदारों को दिया जाता था, या फकीर मिस्कीन, तो शोर शराबा सुनकर कहीं जाग ना जाए, वो भी साथ चल ना पड़े। अब चुपके चुपके जा रहे थे और चुपके चुपके बातें कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से चलो, अल्लाह यदखुलन्ना, कि हरगिज दाखिल ना हो इस पर। अब आप देख लें नून ताकीद का है कि आज कोई आने ना पाए हा इस बाग पर अल्यौमा आज के दिन अलैकुम तुम पर कौन मिस्कीन मिस्कीन आज कोई गरीब मिस्कीन इस बाग में तुम्हारे पास आने ना पाए वह गदो और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह गदो और वो फिर चल पड़े। अभी तो आपस में मतलब जैसे प्लानिंग है चल रहे हैं अब गदो वो चलते गए वो चल पड़े अला हर दिन। हर्द जो है हर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अरबी जबान में जैसे इसके अंदर तीन माने पाए जाते हैं एक इरादा दूसरा जल्दी तीसरा गुस्सा। तो गोया के अब उनका तो ये डिटरमाइनेशन था उनका ये फैसला था विल पावर थी और फैसला उनका क्या था कि किसी को देना नहीं है ना वो आपस में सारी प्लानिंग कर चुके थे इसीलिए तो जल्दी जल्दी चुपके चुपके। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जल्दी तो सूरत अब वो तेजी तेजी से कर रहे थे सारा कुछ ना कि देर ना हो जाए क्योंकि फसल पकी हुई है और गरीब आ ना जाए। और तीसरी बात गुस्सा भी बहुत था गुस्सा किस चीज पर सारी जिंदगी बाप फसल को लुटाता रहा और ये गरीब मिस्कीन खाते रहे। तो इस अगर वैसे तर्जमा किया जाएगा ना तो ये तर्जमा मुश्किल है लेकिन वैसे आपको याद रखना है इस बात को कि हर्द के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसके मानी होते हैं रोकना ना देना तयशुदा फैसला और फिर सुरत। तो बाज लोगों ने इसका तर्जमा किया बखीली बाज ने तर्जमा किया जोर से और बाज ने फिर इसका जो है वो ये तर्जमा किया के लपके हुए अगदउ अला हर दिन के लपके हुए वो सुबह सुबह निकले। बाज ने ये तर्जमा किया कि वो बखीली के साथ सुबह सुबह निकले। तो जब आपको उसकी असल याद हो जाएगी ना किसी चीज की फिर आप परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब असल उसकी याद की जाए। तो वो तेजी से सुबह सुबह निकले वो गुस्से के साथ सुबह सुबह निकले और वो रोकने का मना करने का इरादा रखते हुए सुबह सुबह निकले और हाल उनका क्या था कादिरीन कादिर वाहिद है कादिरीन इसकी जमा है और हाल उनका ये था गोया कि वो कादिर हैं किस चीज पर फल तोड़ लेने पर। फलम्मा पस जब रऊहा इसको देखा हा की जमीर किसके लिए बाग के लिए जरा ऊंचा बोला करें हा की जमीर किसके लिए बाग के लिए। कालू वो बोले इन्ना लदौलून आपने अभी तिलावत सुनी आपने देखा इमाम साहब ने तिलावत में ये जो लफ्ज था ना ये आई थी इसको बहुत सोच के साथ और बहुत ऐसे था बस दिल के अंदर ये चीज चली जाएगी। तो जब वहां पे पहुंचे तो अब ये नहीं है इसका तर्जमा के गुमराह हो गए इसके दो मानी होते हैं एक होता है गुमराह होना एक होता है रास्ता भूल जाना। तो कहने लगे कि इन्ना लदालून कि हम तो रास्ता ही भूल गए हैं बल नहनु महरूमून नहीं बल्कि हम महरूम हो गए हैं। जब वो वहां पे खेती में पहुंचे तो वो खेती जो एक दिन पहले देखी थी और एक दिन बाद जो सुबह सुबह देखी तो उन्हें बाग को देखकर यकीन ही ना आया कि इनका अपना बाग है। अब कहने लगे कि शायद हम रास्ता भूलकर किसी और जगह आ गए हैं और जो है फौरन क्या कहने लगे कि नहीं नहीं हम तो रास्ता ही भूल गए हैं। और फिर थोड़ी सी देर बाद जब गौर किया तो फौरन कहने लगे बल नहनु महरूमून नहीं बल्कि हम तो महरूम कर दिए गए। महरूम वाहिद है जैसे किसी पर कोई चीज हराम ही कर दी जाए उसको महरूम कर दिया जाए तो महरूमून जमा है कि नहीं। जैसे जब गौर किया तो उन्हें यकीन जब आया कि हमारा ही बाग है तो चीखे मारने लगे बल नहनु महरूमून नहीं हम तो महरूम रह गए। काला औसतहुम कहा उनके औसत ने। अब इसके दो तर्जमे हैं और दो तर्जमे क्या हैं वस्त जो है ये म्याना रो के लिए भी आता है। वस्त के मानी क्या होते हैं कि जो मोतदिल शख्स होता है ना जो कैसा होता है कि बखील भी ना हो और लुटाने वाला भी ना हो तो औसत तो उनका जो दरमियाना था जो जिसके अंदर तवाजुन पाया जाता था वो कहने लगा काला औसा तो हम एक इसका तर्जमा ये है। और आप देखेंगे जैसे आप रोटी खाती हैं तो उसका दरमियान बड़ा अच्छा लगता है ना और जैसे जो हमें जिंदगी मिली है इसका दरमियान बड़ा अच्छा लगता है वो क्या है जवानी। जवानी बड़ी अच्छी लगती है, बचपन में समय नहीं होती, बुढ़ापे में माजूरी। अच्छा इसी तरह जो है जो ये मौसम है इसमें आजकल का मौसम बड़ा अच्छा लगता है ना, और एक है खिजां और एक है गर्मी एक है सर्दी, इन सब में से मोतदिल और बेहतरीन और दरमियाना कौन सा है? बहार। बहार बड़ी अच्छी लगती है, तो जो उनमें से दरमियाना था और दरमियानी रविश जो है ये बड़ी खूबसूरत है, और ये पैगंबराना रविश है, तो उनमें से जो दरमियाना था एक मानी है। दूसरे इसके मानी है कि जो उनमें से जो है वो अच्छा आदमी था, इसका तर्जमा अच्छे का भी किया जाता है, जैसे उम्मते वस्त सबसे अच्छी उम्मत है ना, और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि फिर इसके माने जैसे कि वो मंजिला था, वैसे औसत हो सकता है यानी दरमियाना, लेकिन ये भी कि ना वो बड़ों में से था ना वो छोटों में से था बल्कि वो मंजिला था। मंजिले बड़े मजे में रहते हैं, बड़ा भाईजान को ये करना चाहिए, और छोटा जो है वो बेबी रहता है, तो मंजिला जो होता है वो ऊपर वाले की मोहब्बत और मजे भी लेता है और छोटे वाले की तवज्जो भी लेता है। तो बहरहाल वो मंजिला था, वो कहने लगा, और आपने पीछे भी पढ़ा है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से भी, तो उनमें से एक भाई जो उनको समझा रहा था, तो अब यहाँ पे उनमें से जो दरमियाना था जो सबसे बेहतर था, बाज ने इसका तर्जमा सबसे बेहतर का भी किया है कि जो उनमें सबसे बेहतर था सबसे अच्छा था, उसने कहा अलम अकुल्लाकुम, क्या मैंने नहीं तुमसे कहा था लौला तुसब्बिहून, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? तो कब उसने कहा था? जब वो प्लानिंग कर रहे थे कि गरीब मिस्कीन नहीं आएंगे, जब वो कसमें खाकर कह रहे थे कि कल सारा बाग का फल हम खुद ही तोड़ लेंगे, तो ये जो था ना जिसका जमीर जिंदा था तो वो अपने भाइयों को मलामत कर रहा था, वो एक दूसरे को तरगीब दिला रहा था कि मैंने तो, वो बार बार कह रहा था तुम अल्लाह की तस्वीर बयान करो, अल्लाह से डरो, कैसी प्लानिंग कर रहे हो? तो लौला तुसब्बिहून, कि मैंने तो तंबीह की थी कि तुम अल्लाह को याद करो और फिर तुम इंशाल्लाह कहो, और फिर मैंने कहा था कि ये तुम्हारी नीयत बहुत बुरी है कि गरीब मिस्कीनों को तुम नहीं खिलाओगे और बाप की जो नेक एक तरीका था तुम उसको छोड़ रहे हो। हमेशा ऐसा होता है कि घर के अंदर कोई एक फर्द ऐसा जरूर होता है, सबके दरमियान में एक शख्स जरूर होता है, तो लौला तुसब्बिहून, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते, एक इसके मानी है कि तुम इंशाल्लाह क्यों नहीं कहते, और दूसरे मानी है कि तुम अल्लाह को याद करो अल्लाह से डरो। पालू, वो कहने लगे सुबहाना रब्बिना, अब वो कहने लगे पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना जालिमीन, बेशक वाकई हम जालिम थे, हमने गलती की, नीयत गलत थी, इरादा गलत था, और हमारी प्लानिंग गलत थी, और हमने जुल्म किया, वाकई हम गुनाहगार थे। जुल्म क्या होता है? शिर्क करना। और याद रखें कि अब अपने माल में से किसी को ये ना देना कि दूसरे को देंगे तो फकीर हो जाएंगे, ये भी शिर्क है। अल्लाह तो कहता है कि माल तो मेरा है, मैंने तुम्हारे माल में दूसरों का हिस्सा रखा है ना, है ना, तो और वैसे भी दूसरों का हक है, तो ये जुल्म है कि जब दूसरों को उनका हक ना दिया जाए। तो अब वो इकरार करने लगे और अपनी गलती का उन्होंने गलती को माना और पुकार उठे वाकई हम गुनागार थे। फाकबला बादहुम अला बादिन यतलावमून, फाकबला, अब फाकबला के मानी है कि एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होना। फाकबला पस मुतवज्जो हुआ बादहुम, इनमें से बाज अला बादिन बाज पर, अब वो आपस में एक दूसरे की तरफ उन्होंने रुख किया, पहले तो भागे जा रहे थे ना, फल तोड़ना है फसल काटनी है, अब जब वहां पे कुछ भी नहीं था गलती का एहसास हुआ तो अब आपस में एक दूसरे की तरफ रुख कर कर क्या करने लगे? ये तलावा मून, एक दूसरे को मलामत करने लगे। और ये तलावा मून क्या है? लाम व मीम से है, और ये भी बाबे तफाउल है कि लॉन्ग होता है एक दूसरे को बुरा भला कहना। एक कहता है कि तो इसने असल में ये मशवरा दिया था, दूसरा कहता है कि मेरा तो इरादा नहीं था इसने मजबूर कर दिया, तीसरा कहता है कि अब क्या करते, इतना ज्यादा इसने वो लान तान की थी कि बस फिर ऐसा हो गया, और एक दूसरे को, एक को कहता है दूसरा दूसरे को कहता है, क्योंकि जब भी गलती होती है ना इंसान की फितरत है कि वो इन गलती को तस्लीम नहीं करना चाहता, और एक दूसरे पर जो है वो लानत करता है मलामत करता है एक दूसरे को बुरा भला कहता है। तो अब जो है वो उन्हें एहसास हुआ है गुनाह का और अब एक दूसरे को जो है वो मलामत करने लगे इल्जाम देने लगे। पालू या वैलना, कहने लगे अफसोस हमारे हाल पर, इन्ना कुन्ना तौगीन, बेशक हम ही सरकश हो गए थे। तौगी की जमा तौगीन, अब इसके मानी क्या है कि इतनी बड़ी हमने गलती की है, इतना बड़ा गुना, इतनी बदनीयती, इतनी बखीली, और ऐसी गलत बात की, इन्ना कुन्ना तागीन, बेशक हम सरकिश हो गए थे। असा रब्बुना युबदिलना खैरम मिन्हा, करीब है, और असा के मानी शायद के भी होते हैं, करीब है या फिर शायद रब्बुना हमारा रब, अयुब दिलाना के वो बदल दे हमें, खैरन, खैरन के माने क्या है, बेहतर, बेहतरीन। ये इसम तफसील है मिन्हा इससे, कि ये जो बाग जल गया है, हो सकता है अल्लाह हमें इससे बेहतर बाग दे दे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, रागिबून। तो गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, गलती होने पर अल्लाह की तरफ रुजू करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने तौबा की, लानत मलामत के बाद अल्लाह से माफी मांगी, और उसके बाद अल्लाह से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हो सकता है कि हमें हमें अब अल्लाह जो है बदले में से बेहतर बाग अता करे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून के मानी क्या है कि उन्होंने अल्लाह से तौबा अस्तगफार किया, अल्लाह ताला से उन्होंने अपने गुनाहों की जो है वो माफी मांगी। और आपको ये बात बताई है कि जब अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी जाती है तो फिर अल्लाह जो है वो गुनाहों को माफ कर देता है। और मुफस्सरीन ये कहते हैं, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह से नकल किया जाता है कि उन्होंने फरमाया कि मुझे ये खबर पहुंची कि जब इन सब लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनको इससे बेहतर बाग अता किया, जिसके अंगूरों के खोशे इतने बड़े थे कि एक खोशा एक खच्चर पर लादा जाता था, इतना अल्लाह ताला ने दिया, सुभान अल्लाह। इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है अल्लाह इतना रहीम है, इतना गफूर है, कैसे गलतियां माफ कर देता है ना। कितनी सख्त इनकी प्लानिंग थी, कितना सख्त इनका गुनाह था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की तरफ रग़बत की तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। और क्या बात पता चलती है कि आपस में भी गलतियों को दिल से माफ करना चाहिए। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि अपनी गलतियों की अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात क्या पता चलती है कि जब इंसान अस्तगफार करता है, जब तौबा करता है, जब अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो फिर अल्लाह क्या करता है, फिर अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा दे देता है। तुम इस्तगफार करो, सूरत हूद में आप पढ़ चुकी, तो अल्लाह आसमान से बारिश के दहाने खोल देगा, जमीन से भी फसल जो है वो उगेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में रिज्क की कशाइश हो, माल की तंगी का मसला हल हो, या जो भी मसाइल है वो खत्म हो, तो क्या करना चाहिए, तौबा अस्तगफार खुद भी करनी चाहिए और इर्द गिर्द भी जो है वो एक दूसरे को जो है वो माफ करना चाहिए। आप देख लीजिए सूरत अलम नशरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, फैजा फरग तफनसब वइला रब्बिका फरगब, रागिबून, अल्लाह की तरफ रुजू करना। तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने हमको दिया इतना। कजालिकल अजाब, ऐसा होता है अजाब। तो अहले मक्का से कहा जा रहा है कि बाग वालों के खेत जल गए तो अहले मक्का तुम्हारे बाग भी जल सकते हैं, तुम अपनी सरदारियों पर नाज क्यों करते हो। और आपको पता है ना अहले मक्का पर फिर कहत आ गया था, और बड़ा शदीद कहत आया था। और बात कहते हैं कि यहाँ पे कजालिकल अजाब से मुराद जो है वो मक्का वालों का कहत है जो उन पर आया था। तो मक्का वाले जो थे वो अपने आप को बहुत समझते थे, और तौहीद का इनकार, रसूल का इनकार, किताब का इनकार, तो जो ये कहते हैं अहले मक्का जो तुम पर आया है तो ये क्या है, ये अल्लाह का अजाब है। कज़ालिकल अजाब, ऐसा होता है अजाब। वला अजाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है, और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। लौ कानू या लमून, काश ये लोग इस बात को समझ लें। तो क्या बात पता चलती है कि अहले मक्का अपने आप को अमीर भी समझते थे, और बागों का मालिक भी समझते थे, और अपनी अमारत पर इतराते भी थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि ये सारे बाग मेरे दिए हुए हैं। तो खुशहाल लोग जो हैं इस गलत फहमी में ना रहे कि ये खुशहाली हमेशा रहेगी, अल्लाह जब चाहे उनकी खुशहाली को बदहाली में तब्दील कर दे। और दूसरी बात ये कि अमीर लोग ये समझते हैं, जैसे अहले मक्का समझते थे, कि मरने के बाद भी हम वहीं नवाजे जाएंगे, हमें जन्नत मिलेगी। तो ये बात याद रखें कि मौत के बाद जब उठाए जाएंगे तो वहां पे जो कुछ मिलेगा नेकियों की बिना पर मिलेगा, वरना बात क्या है, फिर वहां का अजाब तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। अकबर भी इसम तफसील है, लौकानू या लमून, काश लोग इस बात को समझें।